लोग गंदे गंदे शब्दों का व्यवहार करते हैं, चोरी पैमाने इत्यादि का। विशेष करके राजनीतिक जो पार्टियां हैं, गंदे गंदे स्लोगन दे करके हम आपको मना करते हैं कि मत दीजिए, हमारे सिर में दर्द हो जाता है। आप लोग सुनिए, आपका भी कल्याण होगा। गंदे गंदे संसार में केवल भारतीय ही नहीं, भारत में तो है ही है, रोज लोग तरह तरह के शब्दों का कुप्रचार करते हैं। विदेशों में भी ऐसे ही शब्दों का प्रदूषण होता है। केवल पानी का ही प्रदूषण और हवा का प्रदूषण नहीं है। जैसे आप एक सरोवर में पत्थर फेंकिए तो उसमें से गोल गोल तरंगे उठती हैं और वो सरोवर के अंतिम छोर तक चारों तरफ में छूती हैं। ऐसे वायुमंडल में भी तरंगे होती हैं। आजकल एक सेकंड में अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से बातचीत कर सकते हैं। ये ध्वनि के तरंगों पर निर्भर है। इसलिए आप जो कुछ भी शब्द बोलते हैं ध्वनि के तरंगों पर इधर उधर फैलती है। इसलिए संसार में शब्दों का प्रदूषण हवा और पानी से भी अत्यंत अधिक दूषित है। समुद्र की तो ये स्थिति है कि मछलियां सब मारी जा रही हैं, इससे उसको बचाने के लिए लोग चेष्टा कर रहे हैं किंतु हो नहीं रहा, उसमें भी प्रदूषण फैल रहा है। यमुना और गंगा की तो बात ही क्या। तो शब्द की ध्वनि जो होती है ये प्रदूषण सबसे अधिक गंदा होता है, लोगों के वातावरण को एकदम दूषित कर देता है। बच्चे जन्मते हैं उस वातावरण में, उनका भी जीवन खराब हो जाता है, गंदे गंदे विचार आते हैं। इसलिए हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, भगवान ने इसकी व्यवस्था दी। इस ध्वनि को, प्रदूषण को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, इसलिए हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था की। जोर जोर से, लाउडली, खूब जोर के साथ में कुछ संकीर्तन होना चाहिए जिससे कि यह प्रदूषण समाप्त हो जाए। आज यदि ये कीर्तन विश्व भर में नहीं होता तो न जाने क्या इसकी दशा होती। अणु जो परमाणु बम फटते हैं उसकी रश्मियां, उसकी किरणें, आप जानते हैं हिरोशिमा और जापान में कहां क्या क्या हुआ, उसका उससे भी भयंकर शब्द का प्रदूषण है। हरिनाम संकीर्तन से हवा की तरंगों में ये उठ करके विश्व में चारों तरफ में फैल करके शब्द के प्रदूषण को दूर करता है, नहीं तो न जाने हमारी क्या स्थिति होती है। इस नाम में इतनी शक्ति है, हरिनाम में, जो उल्टा नाम जपने पर भी, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, झूठ मत समझेंगे। यदि न्यूटन की थ्योरी न्यूटन ने आविष्कार करके कहीं लिख दिया तो वो सत्य यदि होती है तो हमारे नित्य सत्य की उपलब्धि करने वाले वैदिक ऋषि हैं, उनसे अधिक भगवान हैं, उनकी बातों पर हमको विश्वास करना चाहिए, नहीं करने से चल नहीं सकता। इसलिए जो जो बातें वेदे में कही गई वो सारी बातें सत्य हैं। नाम के संबंध में भी ये कलियुग संतरण उपनिषद का ये मंत्र है, इतना प्रभावशाली है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अजामी इतना दुष्ट दुराचारी होने पर भी, ऐसा संसार का कोई पातक नहीं था जो उसने नहीं किया, कोई भी कुछ बचा नहीं रहा, और उसने अनजान में ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, मरते समय में बस नारायण नारायण किया, अधिक बोलने की जरूरत नहीं। मृत्यु से तो उसी समय में उसकी रक्षा हो गई, बच गया, और फिर हरिद्वार में जाकर के शुद्ध रूप से हरिनाम का साधन भजन किया और झट बोलो वैकुंठ में चला गया। जैसे ये झूठ है, झूठ नहीं परम सत्य है। जिस दिन आप सत्य की उपलब्धि करेंगे उस दिन आप लोग समझ सकते हैं कि नाम में कितनी शक्ति है। जीवन को, धारा को बदल देने वाला ये, उसके जीवन को सुखी और शांत बना देने वाला। आप कुछ मत कीजिए, कलयुग में केवल भगवान का नाम बिना पैसे का सवेरे शाम लीजिए, देखिए थोड़ा सा भी आपके जीवन में सुख और शांति आए। परीक्षा करके देखिए, परीक्षा करने में असफल होने पर तब हमको कहेंगे। प्रार्थना में बड़ी भारी शक्ति है, गांधी जी को तो जानते हैं ना, कैसी प्रार्थना में बल उन्होंने बदलाया, इसके पहले हमारे ऋषियों ने बदलाया। समुद्र का पानी ऐसे लेकर के राम नाम के भरोसे पर और उसको पी लिया। हनुमान जी राम का नाम लेकर के आकाश में उड़ते हैं, उनको आग हवा पानी कुछ भी नहीं कर सकती, ये नाम का बल है, इसलिए इस पर विश्वास रखें। नाम करते समय में आप लोग श्रद्धा के साथ में नाम करें। ये सारे विश्व में फैल करके सब जगत का हित करता है। जैसे घी है, आप लोग घी पी रहे हैं, कुछ खाते हैं, आपके शरीर में कुछ पुष्टि दे रहा है, किंतु उसी घी को आग में दे करके हवन करके दीजिए, उसके कण कण विश्व में सर्वत्र जा करके जितने प्रकार के दूसरी चीज है उस सबको श्याम में बना देता है, शुद्ध बना देता है। उसके अलग अलग कण गाय इसमें आग में देने से हवन से उसके कण निकल करके बिखर जाते हैं विश्व में और विश्व को शांति करने वाले। यदि अधिक यज्ञ किया जाए तो समय पर वर्षा, समय पर सभी काम ठीक। इसी तरह से हरिनाम में ऐसी शक्ति आप लोग पढ़ करके देखें। तब इसमें एक बात है, प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि का सेवन न किया जाए। चाय में भी विष है, आप अभी नहीं समझते हैं, स्लो पॉइजन है प्याज में। अभी अमेरिका में मैं गया, वहां पर अनुसंधान किया गया, 21 प्रकार के स्लो पॉइजन हैं उसमें। इसलिए प्याज लू यदि पॉकेट में रहती है, प्याज लू नहीं लगता, गर्मी को शांत कर गठिया इत्यादि को दूर कर देता है, और उसको आदमी इस तरह से दवा का इस तरह रोज रोज यदि खाएगा तो जरूर उसका खूब प्रभाव पड़ेगा। ये जड़ी बूटियां हैं, इसको देख सुन करके करना चाहिए। नाम कीर्तन करते समय में जहां संकीर्तन हो रहा है, जिससे विश्व का कल्याण इसके द्वारा हो रहा है, उस समय में जो लोग कीर्तन जोर से कर रहे हैं उनके मुख से हरिनाम निकल रहा है, तो उनके जितने पाप भी यदि कुछ हो तो निकल करके वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। और जो कीर्तन करने के समय में मुख बंद करके रहते हैं उनके मुखों में चले जाते हैं उनका पाप। राज समझ रहे, अभी हरिनाम कीर्तन जोर से हो रहा है, जो लोग बोलेंगे नहीं, जो बोल रहे हैं उनका पाप निकल जाएंगे, और वातावरण में मिलकर के फिर उनके शरीर में कानों में उनके मुख में चले जाएंगे जो नहीं कर रहे, और वो सब पातक उधर में चले जाएंगे, दोष चले जाएंगे, त्रुटियां चली जाएंगी, और उनका जो कुछ अच्छा होगा वो मिल करके आ जाएगा जो लोग हरिनाम जोर से करते हैं। इसलिए सामूहिक रूप में बड़े अच्छी तरह से सामूहिक कीर्तन, अर्चन पूजन वंदना सबकी अपेक्षा कली काल में हरिनाम श्रेष्ठ है। इसी का हमारे महाजनों ने, व्यास ने, सुखदेव गोस्वामी ने, हमारे मध्वाचार्य विष्णु स्वामी, रामानुज, अंत में चैतन्य महाप्रभु, उनके परिकरों ने, यहाँ तक कि राजनीतिक लीडर हमारे गांधी जी ने भी मरते समय में राम राम कहकर। इसलिए भगवान के नाम के बराबर और कोई चीज नहीं है। अभी कीर्तन होता है, आप लोग पीछे से कीर्तन को दोहराएंगे और करेंगे। ये क्या कन्हैया आजा मेरे बाल टोली में, खूब लंबे स्वर। ध्यान माने किसका ध्यान करेंगे, कोई ठीक नहीं। भगवान का नाम रूप गुण लीला, कृष्ण ही भगवत्ता की परम सीमा है। वेद उपनिषद शास्त्र गीता भागवत रामायण पुराण सभी कहते हैं, ध्यान यदि लगाना हो तो कृष्ण का ध्यान किया जाए, राम का ध्यान किया जाए। किंतु ध्यान लगना सहज बात नहीं है, दिमाग को खाली करेंगे ध्यान लगाने की चेष्टा करें, जगत की जितनी जंजाल है सब वहीं पर उपस्थित हो, लाखों तरह की चिंताएं इसमें आ जाएंगी। शुद्ध रूप में ध्यान होना बड़ा भारी कठिन है, विशेष कल के कलियुगों के लिए। सतयुग में कहीं संभव था, जबकि चित्त शुद्ध होता। यदि कहिए हम यज्ञ करेंगे। आजकल यज्ञ लोग कराते हैं, लोगों को ठगते हैं। वेदों में यज्ञ की विधि है, किंतु वो त्रेता युग के लिए है, सतयुग के लिए यज्ञ नहीं, क्योंकि निर्लोभी यज्ञ कराने वाले जगत में बहुत कम है। शुद्ध गाय का घी मिलना बड़ा भारी कठिन है। निर्लोभी और वेदों में पारंगत यज्ञ कराने वाला वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य जी जैसे लोग यज्ञ कराने वाले अब नहीं रह गए हैं। बहुत असंभव, कोई भी शुद्ध चीज नहीं मिलेगी। शुद्ध पानी जब नहीं मिलता है, घी नहीं मिलेगी। यज्ञ कराने वाला वैसा वेदज्ञ, यज्ञ को जानने वाला होता, हवक इत्यादि सब, तो वो क्या यज्ञ करा सकते। वो पैसे की तरफ में देखते हैं कि कैसे माल लूट लिया जाए, लोगों को बेवकूफ बनाकर। इसलिए कलिकाल में ये वो भी नहीं है यज्ञ। यदि कहीं ये दान देंगे, पति कमा रहा है, पत्नी कमा रही है, बहन कमा रही है, बेटा कमा रहा है, सभी कमा रहे हैं, तभी अपना पूरा नहीं पड़ता। वो क्या दूसरों को देंगे? यदि किसी को देंगे तो किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए देंगे। आज अमेरिका किसी को देता है तो ऐसे नहीं देता, किसने रूप में देता है, पहले अपनी अपना स्वार्थ देख करके तब देता है। किसी गरीब का उपकार नहीं करते। संसार में इसी तरह से दान भी संभव नहीं था, कभी है ही नहीं, तो दान क्या करेंगे? अपना पूरा नहीं पड़ता। एक यही चीज है जिसमें रुपए की जरूरत नहीं, वेदज्ञ ब्राह्मण की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, किसी चीज को पवित्र होने की भी जरूरत नहीं, चित्त को समाधिस्थ करने की भी जरूरत नहीं, जो जिस रूप में है। हारमोनियम की भी जरूरत नहीं, ऐसराज की जरूरत नहीं, गले की कसरत की जरूरत नहीं। स्वर मीठा नहीं है, मोटा है, तभी कोई बात नहीं, हृदय से निकलना चाहिए। दिन में करो, रात में करो, पलंग पर बैठकर कर, मरते समय में, टट्टी होते समय भी कर सकते हैं। कीर्तन का एक ऐसा प्रभाव देखिए, एक आदमी बहुत रूप से अच्छी तरह से ध्यान लगा रहा है, किंतु जहां कीर्तन की ध्वनि पहुंची, 10-5 आदमी मिलकर के कीर्तन करें, वो ध्यान लगा सकेगा? नहीं लगा सकता। यज्ञ करने बैठे हैं कोई, और 10-20-50 आदमी, 100 आदमी मिलकर के हरिनाम करने लगे जोर से, वो भी नहीं लगा। मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी कीर्तन की ध्वनि हो रही थी, देखिए सब लोग तन में हो रहे थे, किसी की चिंता इधर उधर में गई, अपने आप चित्त को एकाग्र करके ध्यानस्थ और समाधिस्थ कर देगा ना। जगत में सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा भगवान का नाम दान है, इसके समान और कोई दान नहीं। यदि किसी को भगवान की तरफ में उसके चित्त वृत्ति को मोड़ दिया जाए, भगवान के नाम की तरफ में उसे लगा दिया जाए, और सचमुच में महापापी भी व्यक्ति हो, जैसा भी हो, यदि नाम लेने लग गया, उसको साधु रे व सम्मंतव्य, साधु समझो। इसे संसार में यदि कोई दान है तो सबसे बड़ा आजकल का ये हरिनाम दान। यदि यज्ञ भी कोई बड़ी है तो हरिनाम यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ। तप भी यदि है तो हरिनाम के समान कोई भी तप नहीं है। सहज रूप में, साधारण रूप में, सबके लिए सुलभ, दरिद्र अमीर, धनी गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, रोगी स्वस्थ, सबके लिए। आदमी को बयान करना चाहिए सवेरे कुछ न कुछ सब लोगों को, ये इंद्रियास ठीक रहे। हरिनाम संकीर्तन करने से करताल बजाते हुए थोड़ा सा नित्य हो जाए, अपने आप व्यायाम हो गया कि नहीं हो गया? अलग से व्यायाम करने की क्या जरूरत है? अभी जिस प्रकार से कीर्तन हो रहा था और जिस प्रकार से नित्य करते हैं, अब उसमें कौन सा, उसके सारे अंग जितने हैं, प्रत्यंग हैं, अपने आप उनका व्यायाम हो जाता है। यहां तक कि दिमाग का भी व्यायाम हो जाता है, हृदय का भी हो जाता है, इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाती है, चित्त चंचल शांत प्रशांत, सब प्रॉब्लम सब लोगों का भूल जाएगा कीर्तन करते समय। इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसा समझ करके हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था की। हरे नाम नामैव केवलम कलौश नास्ते व नास्ते, आप कोई जगत में कलयुग नहीं। इसलिए यदि दूसरा कोई आपको कोई उपाय बताता है, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, यज्ञ करो, बात नहीं सुनो। सहज सरल रूप में जो वृद्ध हैं, लड़के हैं, विधवा हैं, सथवा हैं, सभी लोगों के लिए, गरीब अमीर किसी भी जाति का हो, मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई कोई भी हो, सबके शास्त्रों में नाम की महिमा। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा, बारी मथे बरु हो यकृत शिकटाते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपे। चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए, चाहे आकाश में फूल खिल जाए, ये संभव हो सकता है, खरगोश के वो सिंह निकल जाए, कछुए के पीठ पर भले ही केश निकल आए, बाल हो जाए, बर्फ से आग निकल जाए, ये भी संभव हो सकता है, किंतु और भी पानी को बिलोने से भले ही घी निकल आए, कभी नहीं होता है। लाख जन्म तक पानी को मंथन करो, उसमें घी नहीं आएगा। भले ही रास्ते की जो धूल है उससे तेल निकल सकता है, तुलसीदास जी कहते यह भी संभव हो सकता है, इसको असंभव नहीं मानता, किंतु यह संभव मानता हूं, बिनु हरि भजन न भवतरि, संसार से आपका कल्याण नहीं हो सकता। बिना पैसे की इतनी बड़ी दवा की खुराक पावरफुल आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके ये सब किया है, पूर्ण रूप में विश्वास रखेंगे। यदि मुसलमान कुरान पर विश्वास करता है, यदि अंग्रेज लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं, अपने बच्चों को गीता बाइबल इत्यादि पढ़ाते हैं, मुसलमान लोग कुरान पढ़ाते हैं, उनको ये नमाज इत्यादि पढ़ाने के लिए शिक्षा देते हैं, केवल हिंदू ही ऐसे हैं, सनातनी ऐसे हैं, अपने धर्म में रुचि नहीं, इसलिए इनकी इतनी इनका इतना पतन है। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाएंगे, भगवान का नाम कराएंगे, मांस मछली इत्यादि से परहेज कराएंगे, सिखलाएंगे, आप अपने पिता को आदर करते, माता का, बच्चों को सिखलाएंगे कि हम माता पिता का आदर करते हैं, तुम भी करना सीखो। यदि आप अपने घर से शिक्षाएं नहीं देंगे, कुछ दिनों के बाद आपके बच्चे आपको नहीं मानेंगे। जिस घर में माता पिता का आदर नहीं है, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, कभी भी नहीं सुधर सकते, इस चीज को गांठ बांध कर रखिए। महिलाएं अपने पति की सेवा करके आदर्श स्थापित करें, राम सीता जी जैसा, जैसे कि उनके बहू आए तो वैसा ही करें। यह सब शिक्षाएं घर से होनी चाहिए। पति कभी भी अपनी स्त्री को खिलौना न समझे, अपनी अर्धांगिनी समझे। जिस घर में महिलाओं का आदर नहीं होता, उनका घर नरक हो जाता है। महिलाएं भी आजकल आधुनिक शिक्षा लेकर के प्राचीन शिक्षा को भूल रही हैं, सास ससुर का आदर नहीं करती, बल्कि अपने माता पिता की याद करते हैं या दूसरे की। ये खबरदार नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों का रखना चाहिए। घर घर में तुलसी का विवाह, घर घर में वैष्णव का, साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। बस इस तरह से रह करके जिस घर में भगवत उपासना नहीं होती, वो श्मशान भूमि कहा गया। यहां पर संतों का आदर नहीं है, संत माने ये संन्यास लेने वाले ही नहीं, यदि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी, जैसे महाराज जनक थे, अभी भी हमारे कलयुग में कितने लाखों संत गोपियां देखिए घर की स्त्री हैं। इसलिए गृहस्थ में भी यदि भगवान का भजन करने वाला, शुद्ध श्रद्धा वाला, अपने माता पिता का आदर करने वाला, गुरुजनों का आदर करने वाला, सर्वोपरि भगवान में विश्वास रखने वाला यदि होगा, तो उसका घर सोने का बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। पश्चात्य सभ्यता की तरफ में मत दौड़ो, विशेष करके हमारी लड़कियां कन्याएं उधर में मत दौड़ो, बाल मत छंटवाओ, कुत्ते जैसा झबरा ऐसा मत बनाओ, अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानो, तब भगवत भजन तो बहुत ऊंची बात है। अभी से हिस्सी का आदत मत लगाओ, शराब मत पीवो, धूम्रपान मत करो। आजकल विदेशों में तंबाकू का नशे और ये क्या ड्रग, न जाने क्या क्या नशीली चीजें निकल रही हैं। खबरदार उसके तरफ में मत जाना। बच्चे लोग भी पान का मसाला न खाएं, लड़कियां तो इसे बहुत दूर रहें। माता पिता योग्य चुन करके वर जिसको शादी देते हैं उनके साथ में चुपचाप शादी करो, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। दो दिन का प्रेम स्थायी नहीं होता, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समाज को बनाते हुए हम समाज के निर्माता हैं। आप लोग समाज के निर्माता हैं। आप लोग यदि अनदेखा करेंगे तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा सब हुआ है। यदि आप दूसरे को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले उसका पालन कीजिए। स्त्रियां भी यदि अपने अपनी बहू को कुछ शिक्षा देना चाहती हैं, लड़कियों को, अपने आप पहले सीखें। स्त्री और पुरुष सदा काल से दोनों एक गाड़ी के दो चक्के हैं। आजकल स्त्रियां स्वतंत्रता मांग रही हैं। किस चीज की स्वतंत्रता मांग रही हैं? पुरुष लोग अलग से स्वतंत्रता चाह रहे हैं, किस लिए? दोनों मिलकर के गाड़ी नहीं चला सकते। आजकल संसदों में उठ रही है 33% हमको चाहिए। क्या 33%? पुरुषों को क्या जरूरत है 100% की? वो कहती है 100% उनको दे ना दे। ये सबके झगड़े बखेड़े में आप लोग ना जाइए, नहीं तो शांति दूर हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति जैसी है जैसे सीता जी थे, अभी देखो कृष्ण का, कृष्ण की प्रिया जी राधा जी है। जरूरत पड़ने पर कृष्ण राधा जी के चरणों में अपने मस्तक को दे देते हैं, कहते हैं कि हमारा अपराध होगा, क्षमा करेंगे। ऐसा कोई राम भी नहीं कर सकते। सीता जी के पैर में यदि कांटा गड़ गया, राम निकालने जाएंगे, सीता जी नहीं निकालने देंगे, राम भी नहीं निकालेंगे, मर्यादा की हानि होगी। किंतु मर्यादा को कहां, लाख से लाखों को लाखों कोस दूर मारकर कृष्ण गोपियों के चरण में गिरती है। यशोदा मैया प्रेम से कृष्ण के कान को मेटती हैं, उनको बांध देती हैं परब्रह्म को, जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, इसका कुछ नहीं, और उसको यशोदा मैया पुत्र जैसा स्नेह कर उसे बांध देती है, इसका नाम भक्ति। ऐसे हमारे भारतवर्ष के लोग यदि बने, एक एक पैसे के लिए घूस, आज ऐसी कोई भी हमारी सरकार का या जैसी कोई भी है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर घूस नहीं, किंतु घूस लेने वाले कौन है? हमारे समाज के ही तो, हमारे भाई ही लोग, हमारे पिता लोग, हमारे चाचा लोग, यही तो है, दूसरे कौन है? ये समाज का कैसे कल्याण होगा जहां पर एक एक बात के लिए घूस है? मैया कहेंगे बेटा घूस ले आना, नहीं तो घर नहीं बसेगा। पत्नी कहेगी ये तुम क्या कमाता है जो पैसा नहीं लाता, और लोग तो कितने पैसे बटोर रहे हैं। ये नहीं शिक्षा देंगे, ये नहीं कहेंगे घूस मत लेना, हम लोग भूखे खाएंगे, साग खा करके जीवन निर्वाह कर लेंगे, सूखी रोटी खाएंगे, जीवन का निर्वाह करेंगे, भगवान का भजन कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जान करके, भगवान को जान करके जगत से चला जाना है। खाने पीने मौज करने के लिए हम नहीं आए, इसलिए इन सब बातों पर विचार करके गहराई से। आज बूढ़े लोग जो कि आज अपनी नौजवानी में जब तक काम करते थे लाखों रुपया करते थे, घर का परिवर्श इत्यादि करते थे, उनके लिए जी जान लड़ा देते थे, आज वही पिता घर में असहाय बैठे हैं, उनका बेटा पानी देने के लिए तैयार है, उनकी बहू देने के लिए तैयार। क्यों? उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी कि नहीं, जरा देखो। इसलिए आप लोग सचेत रहेंगे, और यदि सब कुछ करके भी, माता पिता का आदर करके भी, पत्नी का पति का होने पर भी यदि भगवत भजन नहीं हुआ तो भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि पिता के परम पिता के भी पिता भगवान है। उन्हीं से जगत विश्व संग होता है। इस चीज को समझो, माता के गर्भ में किसने पालन किया? तो कहेंगे जैसे माता पिता ने जन्म दिया, तो तुम्हारे माता पिता ने यदि जन्म ही दिया तो 50 वर्ष के बाद में 60 वर्ष के बाद में तो है ना, तो है, तो अब बच्चा दो चार दे दे तो नहीं दे सकते। जिस समय स्त्रियों को संतान होती है उस समय उनके दूध आ जाता है, और समय क्यों नहीं आता? इसलिए समझो ये सबके प्रभु कृष्ण है, भगवान समस्त भगवानों के भी भगवान वो कृष्ण है। और कलयुग में एक नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं। वाल्मीकि रामायण जब बना तो उसमें 1,00,000 श्लोक, सभी देवता दानव और देव ये पशु लोग लड़ने लगे। देवता कहते हैं मैं लूंगा, मनुष्य कहने लिए मैं लूंगा, दैत्य दानव कहने लिए मैं लूंगा। इतने में शंकर जी पधारे, जगत के गुरु शंकर जी हैं। उन्होंने कहा कि क्यों लड़ते हो? तो ये मैं लूंगा, तो मैं लूंगा, तो मैं लूंगा। क्यों? उसके कारण से जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। शंकर जी ने कहा लड़ो मत, मैं बांट देता हूं, विभाग कर दिया। 1,00,000 श्लोक थे, उसमें से 33,000 तीनों को दे दिया, बाकी कितना बचा? 1,033 1,000 में फिर से विभाग किए, 333 बच गया, एक बच रहा। उन्होंने कहा जी आप एक बच गया है, इस एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 चरण में से एक एक चरण सब कुछ बांट दिया। अब रह गया एक चरण, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं अनुष्टुप छंद में। अब 8 श्लोकों 8 अक्षरों में से 2-2 अक्षर सबको दे दिए, 6 बट गया। अब कितना रह गया? ये समस्त भागवत का, रामायण का, पुराण का, वेद का सार कृष्ण या राम नाम है, ये समझो। विश्व में जितने प्रकार के साधन है, योग, तपस्या, व्रत, होम, स्वाध्याय, जो कुछ सबका सार क्या है? ये भगवान नाम है। इसलिए जो भगवान का नाम करता है उसके सभी साधन हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक समस्या, कोई महिला या पुरुष बड़ी श्रद्धा से वृंदावन गए, उनको श्रद्धा हुई, उन्होंने बाल गोपाल के एक मूर्ति खरीद लाई, पूजा कर, किंतु बहू नहीं पूजा करती, बेटे की भी रुचि नहीं है, उनको कहीं जाना होता है या तो अपने साथ ले जाएं, और नहीं तो दूसरा कोई उसकी पूजा नहीं करेगा। और जब विशेष करके बूढ़े होकर के जब मरने लगे या मरने लगे तब क्या होगा? इसलिए कलिकाल के लिए ये सब चीजें संभव नहीं है। हरिनाम आपने साथ, कोई डकैती करेगा हरिनाम का? हरे कृष्ण कह रहे हैं, कोई डकैती करेगा? आपका कोई छीन लेगा उपासना आराधना? किसी तरह से इसकी हानि नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते ऑफिस में जा चलते भी, वहां पर बैठ करके भी, टहलते हुए टट्टी करते हुए भी भगवान का नाम कर सकते, ये नाम की इतनी बड़ी बहन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले कलि संतरणोपनिषद का यह हरि नाम लेकर के जगत में प्रचार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोग सब कुछ कीजिए, दूसरों की बुराई मत कीजिए, दूसरों की निंदा मत कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए यदि योग्य कुछ है, और हरि नाम कीजिए। इस पर भी यदि कुछ नहीं होता है, शास्त्र गारंटी है, हम लोग आपके गारंटी हैं। देखिए आपके जितने जितने कष्ट हैं, दुख हैं, सब दूर हो जाते हैं कि नहीं? आज ही से घर में जाकर के आरंभ करें, अब फिर कीर्तन करेंगे, जरा करो महामंत्र का या। झांझ करताल कम बजाना, आवाज निकलेगी सब।
मधुर मधुर वेतम
की वंछाएं पूर्ण करने, किंतु उसका भी सार ये मंत्र हरि नाम है, कृष्ण नाम मधुर नाम है, इससे सबका कल्याण। यदि श्रद्धा से करे तो कोई बात ही क्या, और श्रद्धा पूर्वक भी कोई नाम हरि नाम करता है पैर फिसल जाते हैं भी नाम कर लेता है, दुर्गंध आने पर राम राम यदि कोई कर देता है, किसी को चिढ़ाने में राम राम कर देता है, तो भी उसका परम कल्याण हो जाए। भगवान का नाम जैसे कृष्ण, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राम इत्यादि का, कभी कभी भगवान का लीलाओं का कीर्तन होता है, जैसे यशोदा जी ने कृष्ण काल जैसे बांधा, उन सब की लीलाएं हैं। रामचंद्र जी कोई कार्य करें उनकी लीलाएं हैं, विशेष करके कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, इनका भी कीर्तन होता है, उनके गुण का भी कीर्तन होता है, सभी श्रेष्ठ है। इसलिए किंतु सब नामों में नाम श्रेष्ठ होने पर भी उनकी गुण और लीलाएं भी हैं। जैसे यशोदा जी के घर में कृष्ण लाला ने जन्म लिया तो क्या भयो, किसको देंगी, ये नंद का लाला चिरजीवी हो, इसको कोई कष्ट न हो, किसको, विश्व ब्रह्मांड के जो सृजन करने वाले हैं इन लोगों के भी ईश्वर सर्वशक्तिमान राम और नारायणी इत्यादि के भी जो मूल हैं जो कृष्ण, उनके घर में आए हैं और गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। गिरिराज जी से प्रार्थना, गिरिराज जी नंद का लाला जीवित हो, इसको सुख हो। अरे रोता है क्या, कृष्ण को कहती है रोता क्या है, हुआ हुआ क्या हुआ, रोता है तू बतला तो, तू काला कैसे हो गया। अरे नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू काला कहां से टपक पड़ा, कोई कहते जानती नहीं, आधी रात को जन्म हुआ नहीं इसलिए काला बन गयो। कहते नहीं ये तो बात ठीक है, काली गैया का दूध पिया इसने इसलिए काला हो गया। कोई कोई कहती है क्या क्या, अरे स्नान के समय भी इसको जमुना का पानी से स्नान कर दिया। कोई कहते नहीं, सब गोपियां अपने आंखों में इसे बसाती हैं इसलिए आंखों का काजल लगने से ये, और उसको आशीर्वाद दे रही है उस पर ब्रह्म को। कौन ब्रह्म, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौतिषाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म। उनको आशीर्वाद दे रही हैं, यशोदा मैया उनका कान पकड़ लेती हैं, फिर से चोरी करेगा, मट्टी खाएगा, झूठ बोलेगा, कौशल्या मैया कर सकी नहीं कर सकी, वामन देव की मैया कर सकी, अल्लाह खुदा को तो मैया ही नहीं है, बाप माँ अल्लाह खुदा को और हमारे कौन गॉड को नहीं मानते, लेकिन तो है कृष्ण ही गॉड है, उनकी छाया का नाम ब्रह्म है, गॉड है, खुदा है। हम लोगों के यहां जो ब्रह्म की उपासना होती है हम ब्रह्मास्मि, वही उन लोगों की उपासना की छाया है। हमारे ईसा, क्या नाम उनका, यीशु कृष्ण जी भारतवर्ष में आए, काशी में गए, वहां के ब्रह्मवादियों से कुछ शिक्षा मिली। हमारे जो बाइबल कही है, मुसलमानों के जो पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद, ये भारतवर्ष में आए, खुदा माने क्या, अहम ब्रह्मास्मि, थोड़ी सी विकृत उपासना को लेकर के चले गए, शुद्ध उपासना प्रेममयी भक्ति को नहीं लेकर के। गोपियों का प्रिंत बहुत ऊंचा है, उस ब्रह्म का कान पकड़ करके उठाती और बैठाती हैं ये गोपियां। इसलिए विशेष करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय में गोपियों की आराधना, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तत्थाम गंगा रम्या काचित उपासना पदुपद बागे, गोपियों की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। गोपियों ने जिस आराधना से भगवान को वशीभूत कर लिया, उनकी पहियों में पैरों में पहिया पड़ते हैं कृष्ण पर ब्रह्म, कहते हैं कि हमें, मैं तुम्हारा ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, ये पर ब्रह्म की बात भागवत में गीता में कहते हैं। इसलिए प्रेम की जरूरत है, प्रेमी हमारा धर्म है, दूसरा कुछ धर्म नहीं है। नाम के उच्चारण से, नाम के संकीर्तन से ये प्रेम हो सकता है, यदि गुरु ऐसा हो जिसके हृदय में प्रेम हो, नाम के माध्यम से उसको भगवत प्रेम की उपलब्धि करा देगा। ये जो अभी जो कीर्तन कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं, ये उसी लीला का उद्दीपक है। फिर आरंभ कीजिए। संक्षेप में हम लोग आप लोगों को कुछ उपदेश दे, प्रहराज महाराज जी का नाम सुने, पिता से विरोध, पिता कहते थे भगवान का नाम मत करो हमारे घर में, और वो 5 वर्ष का बालक, पिताजी से उसकी ठन गई आपकी सभी बातें मानेंगे तो भगवान का नाम लेना नहीं चाहिए। क्या क्या बातें हुई, प्रहलाद महाराज ने अपने असुर बालकों को जो उनके साथ में पढ़ते थे उनको क्या शिक्षा दी, संक्षेप में 10 मिनट में आपको श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी सुनाए। खड़े होकर के बोलिए। महाराज ने असुर बालकों को जो शिक्षा दी इसके संबंध में कुछ बोला। बैठ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। प्रहलाद महाराज जी उनको कीर्तन कराने लगते, क्या कीर्तन कराए, महामंत्र का खूब सुंदर ध्वनि से कीर्तन करते होकर कीर्तन के रंग में रंग गए। सब कुछ देख ही शुद्ध बुद्धि भूल उठे, हिरण्यकश्यप को खबर लगी, सारे बच्चों को भी प्रहलाद ने बिगाड़ दिया, अपने तो बिगड़ गया कुलंगार, और सब बच्चों को भी उसने बर्बाद कर दिया जीवन। कहां शाम दाम, दंड, भेद, राजनीति, अर्थ रोजगार करने की कौशल, जैसे तैसे बाई हुक एंड क्रूक अर्थ कमाओ, ये न करके ये क्या करने लगे, इनका जीवन बेकार का। ऐसे ही असुर लोगों का विचार है। प्रहलादित मैंने होकर के फिर कीर्तन, भजन करना कोई कठिन बात नहीं, इस चीज को समझो। गोपियां कैसे भजन करती हैं, झाड़ू दे रही हैं और करका कर रही हैं, झाड़ू देते रहे गोविंद दामो पल्ले पर अपने बेटे को झुला दिया और थपथपी देकर के उसे सुलाना चाहती है पल्ले पर, और धीरे धीरे डोटा दे रही और कह क्या रही, गोविंद नामो रही है। आजकल लिपने पुतने का कोई जरूरत नहीं है, मार्बल का घर बना हुआ है, पहले गोबर से घर को लिपा जाता था, बहुत पवित्र रहता था। रसोई घर में जिस रसोई घर में जूते नहीं गए तो वो रसोई घर आजकल क्या रहा है, उसमें यदि बीड़ी सिगरेट पीते हुए नहीं गए, ठाकुर को भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुलसी पत्ता देने की कोई जरूरत नहीं, आए अपने आप उठा लिया खा लिया, फिर दूसरा आया खा गए, पति जी पीछे आए तो वो पीछे खाएंगे, ये सब कोई बलाय नहीं। पहले क्या था, पहले कोई भी काम कर रही हैं, लीप पोत रही हैं, हाथ में पोतने का है गोबर शो, और कह रही गोविंद दामो
शर्मा,
पोखल में टूट रही है। आप लोग मुसल का नाम सुना है? पोखल और मुसल देखा नहीं होगा शायद। मुसल का कितना बड़ा भारी वृक्ष होता है, फल लगते हैं उसमें, लगते हैं ना? आजकल की औरतें उस मुसल को उठा भी नहीं सकती, 10 किलो वजन का, हार्ट फेल हो जाएगा। पहले दोनों हाथों में मुसल लेकर के खटाखट कूटती थी, छाटती थी इस ढेंकी में, ढेंकी भी अपने पीसती थी अपने घर में शुद्ध गेहूं, पूरे पेट माइंड के साथ में गेहूं रहता था, उसका आटा होता था। क्या मजाल ये काग चूंच मार करके उसको उठा ले। एक कोई लड़की थी, विवाहित होकर के ब्रज में कहीं गई, तो वो आटा गूंथ रही थी। आटा गूंथते गूंथते थोड़ा सा एक कौआ आया, उसमें चोंच मार करके आटा उसमें से टुकड़ा करके लेकर के भाग गया और रोने लगे। उसके सास ससुर ने पूछा कि क्यों रो रही? इसलिए रो रही कि पहले जो आटा होता था उसको गूंथने से उसमें इतना विटामिन, इतना रसदार होता, उसमें लचीलापन होता, जब कौआ चोंच में मारे तो वो ऐसे ही वो रह जाएगा, कौआ ले नहीं सकता था। घर में आटा पीसना, चक्की का आटा होना चाहिए जिसमें सभी कुछ विटामिन जला हुआ, कूटते समय में, छांटते समय में, आटा पीसते समय में। उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी कभी होती नहीं थी, पेट की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि काम करती थी। उस समय में क्या करती थी? गोविंद दामो, गोविंद दामो, इस प्रकार से घर का काम काम, यहां तक कि सुक्के को पाठ पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? सवेरे में सुख पक्षी रखा गया है और उसे कहती बोलो सुख को, गोविंद दामो घर का सब काम यही कर। आप लोगों को क्या लगता है कि घर का काम करके भगवान का नाम नहीं कर सकती? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या बात है, नहीं कर सकती? उलूल जुलूल इधर उधर की बात सोचेंगी क्या? जो हमारे पुरुष भाई लोग हैं, उलुल जुलुल बातें चलते हुए साइकिल पर, मोटर में, कार में चलेंगे, इधर उधर की बात और वैसी के चिंतन में बैलेंस इधर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। क्या जरूरत है? सवेरे शाम चित्त को स्थिर करके चलते फिरते उठते बैठते कभी भी भगवान का नाम कर सकते। हरे कृष्णा माई का एक पैसा खर्च होता है इसमें, लगता है किसी का समय बर्बाद हो गया, स्त्री से झगड़ा हो जाएगा इसके लिए, क्या प्रॉब्लम है इसकी? यदि कल्याण रहते किसी में, आप देखेंगे आपका सब जितना कल्याण का ये जितने प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाए। जो होना है सो होगा ही, इसके लिए हम पहले से मरे क्यों? ये हो जाएगा, ऐसा हो गया, हार्ट फेल हो गया या ब्लड प्रेशर नीचे चला गया, क्या जरूरत है? अरे होना होगा सो होगा ही, होई है सोई जो राम रची राखा, को पर तर्क बढ़ाओ ऐसा का, अरे होगा तो भाई, तो इस सब की क्या जरूरत है? चलते फिरते उठते अपना काम कीजिए, अच्छी तरह से कर्तव्य कीजिए, भगवान का स्मरण करने से आपका वो काम सफल हो जाएगा। लाख चेष्टा करेंगे भगवान की इच्छा में कुछ नहीं होगा। जितने पुरुषार्थ वाले थे या हिरण्यकश्यप की बात सुना, भगवान ने नृसिंहदेव ने प्रकट कर करके दिन में नहीं, रात में नहीं, पृथ्वी पर नहीं, आकाश में नहीं, रात में नहीं, दिन में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, किसी महीने में नहीं, महीने के अतिरिक्त जो मलमास पड़ता है उसमें, और अस्त्र शस्त्र से नहीं, किससे मारा? उनको घर के भीतर में, बाहर में, देहली के ऊपर में रखकर, दिन में, रात में नहीं, शाम के वक्त में, अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नखों से, अपने जंगे पर बैठा करके, ऊपर भी नीचे नहीं, एक सेकंड के अंदर में उसकी, उसका जो बर था अजर अमर का, वो सब समाप्त कर दिया। प्रभु के चरणों में शरणागत हुई, सब काम खूब ठाट से कीजिए, प्रेम से रहिए। यदि कुछ बिगड़ गया तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के वजह से हुआ है, इसके लिए स्त्री बेटे समाज दोषी नहीं है। किसी पर कठोर वाणी का प्रयोग मत कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, ये सुख की कुंजी है, शांति की कुंजी है, आपके भविष्य जीवन की। इस तरह से आप लोगों का जीवन हो, देखिएगा जी थोड़े दिन में आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, घर में प्रेम हो जाएगा, शांति विराजी होगी। उसमें से कोई कोई योग्य होंगे, शादी के लिए उनको जोर मत देंगे, वो हो सकता है कि ब्रह्मचर्य जीवन लाभ करके भगवान का भजन करें, उनका परम जीवन सौभाग्य है। आज ब्रज में तीज है, सावन की तीज, हरियाली। आज ब्रज में चारों तरफ में उल्लास छाया होगा, हर गोविंद की पार्टी, और कितने कितने लोगों का रास चारों तरफ में हो रहा है। आज सब में ये रास, ये लीला में दिखलाया जाएगा, हरियाली की। आज बिहारी जी का चरण दर्शन आज होता है, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होगी, हजारों पुलिस वाले लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी आप यहाँ आराम के साथ में बैठे हुए, मैं आपको वृंदावन में ले जा रहा हूँ, और ये हरियाली तीज आपको दिखला रहा हूँ, घटा वहां की, सावन की घटाएं होती हैं। ये सब जीवन के आनंद हैं, किस लिए हरियाली तीज नाम पड़ा? और कृष्ण की, राधा जी की कौन सी लीला हुई? हमारी बेटी सप्ता जी थोड़ी सी क्या याद नहीं है, क्या करिए, झूला का कीर्तन जरूरत नहीं अभी आज के दिन में। तो आज के दिन में किसी कारण से राधा कृष्ण का परस्पर वियोग हो गया, कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधिका जी अंतरंगा स्वाभाविका शक्ति पराशक्ति, कृष्ण से इस शक्ति को निकाल दिया जाए तो निर्विशेष शून्य ब्रह्म हो जाए, कुछ नहीं कर सकेंगे। शक्ति शक्ति मतोर भेद, शक्ति और शक्तिमान मिलकर के एक चीज बनता है, तत्व बनता है। रावण ने शक्ति को हरण करने की चेष्टा की, हरण करके शक्तिमान को मार डालेंगे, किंतु मारे गए। कंस ने भी कृष्ण को मारना चाह, शक्तिमान को शक्ति के लिए कुछ नहीं किया, शक्ति की आराधना करता था अकेले, इसलिए केवल शक्ति की आराधना करना, दुर्गा की पूजा करना, यह भी राक्षसता है, असुरपन है, दैत्य दानवों का है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं, भक्त लोग हैं, शक्ति और शक्तिमान, राधा और कृष्ण, सीता राम, इनका भजन करें, अन्यथा असुर चिंता स्रोत हो जाएगा। इस चीज को समझेंगे, ये दार्शनिक दृष्टिकोण है। इसलिए राधा जी को कृष्ण से कभी अलग नहीं किया जा सकता, उनकी अंतरंगा उनके अंतर में शक्ति है, किंतु उनकी वही अंतरंगा शक्ति लीला विलास के लिए जब कृष्ण की इच्छा होती है राधा जी की, तो वो राधा जी के रूप में परम सुंदरी, गुणमती, रूपवती, कृष्ण के चित्त को भी हरण करने वाली बन जाती है। आज के दिन, दो तीन दिन पहले से ही दोनों में कुछ राधा जी को मान हो गया, राधा जी से अधिक किसी को उन्होंने सम्मान दे दिया, उनसे मिलना चाहा। ये भी प्रेम की ये बड़ी विचित्र चीजें हैं, आप लोग अभी नहीं समझेंगे प्रेम किसको कहते हैं। राधा जी ने मान कर, यदि इस समय कोई स्त्री मान कर लेना तो पति उसको आग में जला डालेगा, उसकी परवाह नहीं करेगा। जरा कृष्ण की तरफ में देखिए, खाना पीना छोड़ दिया, विरह में विवश हो गए, दिन रात उन्हीं की चिंता कर रहे हैं। राधा कुंड में तीन बार स्नान करके उन्हीं के मंत्रों का, नामों का ये जप कर रहे हैं, उस समय में कृष्ण देखा सुबल जी ने जे कृष्ण तो राधा जी के विरह में नहीं जी सकते। उन्होंने कृष्ण से बातचीत की, उसके लिए उपाय सोचा, कजा भी मैं कुछ उपाय करता हूं। और झट उन्होंने, बड़े सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थी से सुबल जी, यदि वो राधा जी का रूप पहन लेते, बना लेते तो एकदम राधा जी बन जाते थे। और इस तरह से कृष्ण के सखा थे, उम्र में 12-13 वर्ष की थी, बहुत ही बुद्धिमान। अरे कृष्ण के सखा हैं वो कैसे होंगे, कृष्ण जैसे ही हो। वो वहां से आए, जावट में पहुंचे, ये लीला होती है वहां ब्रज में, पहुंचे, इनको जेठिला जी ने देखा, राधा जी की सास, यहां पर कैसे आया, मरा है? क्यों आया यहां, मरने के लिए आया, क्या जरूरत, जल्द जल्दी जाओ, तुम काला का दोस्त है, यहां से हट जाओ। अजी मैया, मेरा मछड़ा गुम हो गया, मैं बछड़े की खोज में आया। बछड़ा क्या, तेरा बछड़ा यहां आ गया? तो मैया, वो हो सकता है तुम्हारे गायों के पाल में, बछड़ों में वो मिल गया हो, मैं थोड़ा सा देख लेना, जल्दी से देख करके निकल जाना। तो ठीक, मैं निकल जाऊ। घर के भीतर में प्रवेश कर गए, राधा जी के दरबार में पहुंचे, यहां ललिता विशाल का चित्र पहुंच करके बोले कि आपके प्रेम में कृष्ण प्राण छोड़ देता है। प्रेम हो तो कैसा, राधा कृष्ण से प्रेम है, यदि प्रेम है पानी से मछली को, पानी से निकालू तो क्या होगा, छटपट करते मछली। हमारा भगवान में प्रेम है और अभी हम जीवित हैं तो हमारा प्रेम कहां रहा। कृष्ण के प्राण राधा जी और राधा जी के प्राण कृष्ण है। उस समय में राधा जी बड़ी चिंतित हो गई, कैसे हमारा अपने लिए नहीं कृष्ण कैसे सुखी रहे। भक्ति का यह प्रधान लक्षण है, ये भक्त ये सोचता है कि हमारे लाख दुख होने पर भी भगवान को प्रसन्नता हो, अपने जितने भी कार्य हैं सब भगवान की प्रसन्नता के, कृष्ण के लिए अखिल भोगों का त्याग कर दे और कृष्ण के सुख के लिए अखिल चेष्टा करें। ये नहीं होने से भक्त की कोटि में नहीं आता। राधा जी सर्वोत्तम है, कृष्ण के प्रेमियों में राधा जी सर्वोत्तम है। कृष्ण से मिलने के लिए छटपट कर ले, कैसे मिले, सुबल जी ने एक बार ऐसा करो, हमारा तुम्हारा रूप मिलता है, मैं तुमको अपना वेश से जाता हूं, तुम्हारा वेश मैं लेकर के घर में बैठता हूं और तुम कृष्ण से मिलो, बस ऐसे अपनी पगड़ी लठिया ये सब दे दी, किंतु स्त्री का वेश छिपाना कठिन है। राधा जी के हाथ सुबल बना करके उनको पगड़ी तगड़ी दे करके एक छोटा सा बछड़ा उनकी गोदी में दे दिया, वो गोदी में ले करके और वहां से चल पड़ी जा रही। सुबल जी घर में रहे, अरे मैया मैया ऐसे वाल से बोली सुबल के शव का आके रूप में, अरे मैया मैया देखो तो तुम्हारे घर में ही हमारा बछड़ा मिला, तुम्हारे गायों के पास कहां है, देखें देखा देखा निकल गए। जब कृष्ण के समीप में पहुंचे और ये तो सुबल यहीं रह गए, उस समय में ये सुबल जी राधा जी कृष्ण के पास पहुंचकर, राधा जी का आना बड़ा कठिन है, वो आ नहीं सकती, उसका पति अभिमन्यु बड़ा भारी क्रोधी है, उसकी सास सब समय उसके दोषों को छिद्रान्वेषण करती है, उसकी ननद इतनी कठोर है, उसके अच्छे में भी बुराई देखती है, मिलना असंभव नहीं। सुनते ही कृष्ण समझ नहीं सके, पहचान नहीं सके, वो भी हाय करने लगे, इतने बछड़े उनको हाथ में दे दी और थोड़ा सा अपना घुघट उठा दिया और ये हटा दिया, बस सुबल जी से राधा जी बन गई, दोनों में प्रेम का मिलन। आज हरियाली तीज के अवसर पर ब्रज में ये सब लीलाएं दिखाई दे, साधारण उस प्रेम की महिमा नहीं समझते, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही कृष्ण का स्वरूप है, रसो वैश्य। इसके अधिकारी लोग जगत में कम मिलते हैं इस प्रेम के, किंतु बिना ऐसे हुए परमार्थ तत्व की उपलब्धि नहीं। जिसके हृदय में ऐसा प्रेम है वो कृष्ण को वशीभूत कर सकते हैं, दूसरा कभी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग आप लोग मिलकर कीर्तन करेंगे, सदगुरु का पादाश्रय करेंगे, योग में, तपस्या में, ध्यान में मत जाइए, ये हरिनाम करेंगे गुरु के पादाश्रय में। आप लोगों का कल्याण मंगलम भवतु, कल्याणम भवतु, गौ प्रेमानंदे। कीर्तन कर लो महामंत्र।